एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानो गोष्ठी में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जिसका जवाब शायद हम सब अपनी पूरी जिंदगी तलाशते हैं कि आखिर ये खुशी है क्या? क्या ये बस वो कुछ पल हैं जब हम मुस्कुराते हैं या फिर कुछ और जो इससे कहीं ज्यादा गहरा है? हम सब खुशी के पीछे भाग रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी ट्रेडमिल पर हैं जो कहीं नहीं जाती।
बिल्कुल सही कहा। और इसी उलझन को सुलझाने में हमारी मदद करेगी एक बेहद जरूरी किताब। नाम है हैप्पीनेस और इसे लिखा है दार्शनिक डैनियल एम हेब्रॉन ने।
अच्छा।
और ये किताब कोई आसान जवाब नहीं देती, बल्कि खुशी के बारे में हमारी पूरी सोच को ही हिलाकर रख देती है।
मतलब ये कि शायद हम गलत नक्शा लेकर सही मंजिल ढूंढ रहे हैं।
बिल्कुल।
और आज के दौर में तो ये और भी जरूरी हो गया है। चारों तरफ इतनी बेचैनी है, इतना तनाव है, ऐसा लगता है जैसे हर कोई बस अगले प्रमोशन, अगली छुट्टी या अगले वीकेंड का इंतजार कर रहा है, ये सोचकर कि तब खुशी मिलेगी।
हाँ, और हेब्रॉन की किताब हमें इस तब के इंतजार से निकालकर अब में खुशी के असली मतलब को समझने में मदद करती है।
तो चलिए इस गहरी बातचीत को शुरू करते हैं, पर पहले ये डैनियल एम हेब्रॉन हैं कौन?
वो सेंट लुइस यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं और आज की तारीख में खुशी और वेलबींग के विषय पर दुनिया के सबसे बड़े जानकारों में से एक माने जाते हैं।
और जो बात मुझे इनके बारे में सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये कोई पुराने जमाने के दार्शनिक नहीं है जो बस आराम कुर्सी पर बैठकर सोचते रहते हैं।
सही।
ये मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, यहाँ तक कि न्यूरोसाइंस की जो लेटेस्ट रिसर्च है उसे अपने दर्शन के साथ मिलाते हैं।
हाँ, मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं देते बल्कि उसे असल दुनिया के सबूतों से जोड़ते भी हैं।
बिल्कुल।
और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो उन सवालों पर भी सवाल उठाते हैं जिन्हें हम मानकर चलते हैं। जैसे जब कोई सर्वे करने वाला पूछता है, 1 से 10 के पैमाने पर आप कितने खुश हैं?
हाँ, ये तो बहुत आम सवाल है।
तो हेब्रॉन पूछते हैं कि इस सवाल का मतलब क्या है? क्या हम उस पल के मूड की बात कर रहे हैं या जिंदगी की गहरी संतुष्टि की?
ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं।
उनका काम हमें इन सतही जवाबों से आगे ले जाता है।
तो चलिए सीधे किताब के दिल में उतरते हैं। वो सबसे बड़ी बात क्या है जो हेब्रॉन कहना चाहते हैं?
देखिए, हेब्रॉन अपनी बात 2 बहुत ही आम धारणाओं को चुनौती देकर शुरू करते हैं। पहली धारणा है हेडोनिज्म या सुखवाद।
हेडोनिज्म?
हाँ, जो कहती है कि खुशी का मतलब है ज्यादा से ज्यादा प्लेजरेबल मोमेंट्स यानी सुखद पलों को इकट्ठा करना और दर्द से बचना।
जैसे अच्छा खाना, घूमना फिरना, पार्टी करना।
बिल्कुल। आजकल की सोशल मीडिया वाली दुनिया तो इसी पर चल रही है। हर कोई अपनी जिंदगी के बेस्ट मोमेंट्स की तस्वीरें डाल रहा है। आपने सही नस पकड़ी, पर हेब्रॉन कहते हैं कि ये बहुत ही उथली परिभाषा है। एक जिंदगी जो सिर्फ ऐसे छोटे छोटे पलों से भरी हो, वो जरूरी नहीं कि एक सुखी जिंदगी हो। वो रॉबर्ट नोजिक के एक मशहूर विचार का उदाहरण देते हैं जिसे अनुभव मशीन या एक्सपीरियंस मशीन कहते हैं।
अच्छा, ये क्या चीज है? सुनने में तो काफी दिलचस्प लग रहा है।
हाँ, तो सोचिए, एक ऐसी मशीन है जिसमें आप जिंदगी भर के लिए प्लग इन हो सकते हैं। वो मशीन आपके दिमाग को ऐसे सिग्नल भेजेगी कि आपको लगेगा आप दुनिया का हर सुख भोग रहे हैं।
हर सुख?
हाँ, आप एवरेस्ट पर चढ़ रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े लेखक बन गए, जो चाहें वो सब कर रहे हैं, और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये सब नकली है।
ओके।
तो सवाल ये है, क्या कोई ऐसी मशीन में अपनी जिंदगी बिताना चाहेगा?
ईमानदारी से कहूँ तो शायद 1-2 दिन के लिए मजा आए, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो अपनी असल जिंदगी चाहिए, भले उसमें मुश्किलें हों।
कहते हैं, और यही हेब्रॉन का पॉइंट साबित होता है। हम सिर्फ अच्छा महसूस नहीं करना चाहते, हम एक अच्छा और सच्चा जीवन जीना चाहते हैं।
समझ गया। तो हेडोनिज्म खुशी को पूरी तरह नहीं समझा सकता। ठीक है, ये तो हुई पहली धारणा। दूसरी कौन सी है?
दूसरी धारणा है लाइफ सेटिस्फैक्शन थ्योरी यानी जीवन संतुष्टि का सिद्धांत। ये कहता है कि सुख का मतलब है ये सोचना या ये मानना कि आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है।
मतलब आप अपनी जिंदगी को एक रिपोर्ट कार्ड की तरह देखें और उसे अच्छे नंबर दें। ये तो काफी हद तक सही लगता है। अगर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी अच्छी है तो मैं खुश हूँ, इसमें क्या गड़बड़ है?
देखिए, यहीं पर हेब्रॉन एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये एक दिमागी फैसला है, एक जजमेंट है।
अच्छा।
एक भावनात्मक अनुभव या इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं।
एक जजमेंट है, फीलिंग नहीं।
बिल्कुल। सोचिए, कोई व्यक्ति है जिसके पास अच्छी नौकरी है, सुंदर घर है, अच्छा परिवार है,
सब कुछ है।
हाँ, वो कागज पे अपनी जिंदगी को देखेगा और कहेगा, हाँ सब बढ़िया है, मुझे खुश होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि वो अंदर से हर वक्त एक खालीपन, एक बेचैनी महसूस करता हो।
हाँ, ये तो मैंने भी देखा है और महसूस भी किया है। कई बार जब कागज पर सब कुछ सही लगता है, तब भी एक अजीब सी चिंता मन में रहती है। तो ये सोचने और महसूस करने का फर्क बहुत बड़ा है।
बिल्कुल, और हमारा ये फैसला बहुत कच्चा होता है। आज आप किसी पुराने दोस्त से मिले जो आपसे ज्यादा कामयाब है, और आपकी अपनी जिंदगी के बारे में राय बदल गई।
हाँ, ये तो होता है।
कल आपकी उम्मीदें थोड़ी बढ़ गई और आपको अपनी जिंदगी कम लगने लगी। ये खुशी का कोई ठोस पैमाना नहीं हो सकता।
ठीक है, तो अगर खुशी सिर्फ अच्छे पलों का जोड़ नहीं है और नहीं ये सोचना है कि सब ठीक है, तो हम तो कहीं अटक गए। हेब्रोन हमें इस दुविधा से बाहर कैसे निकालते हैं?
वो कहती हैं कि खुशी कोई पल भर का एहसास या दिमागी फैसला नहीं है।
तो फिर क्या है?
ये एक गहरी, स्थिर और लंबे समय तक चलने वाली भावनात्मक अवस्था है। ये आपके स्वभाव का हिस्सा है, आपके मूड की तरह नहीं जो हर घंटे बदलता रहे।
ये
गहरी भावनात्मक अवस्था। इससे थोड़ा और आसान शब्दों में समझते हैं।
जरूर।
इसे समझने के लिए हेब्रोन ने तीन हिस्से बताए हैं। पहला है अनुमोदन, यानी एंडोर्समेंट।
अनुमोदन
इसका मतलब है जीवन के प्रति हां की भावना, एक तरह का उत्साह, एक भीतरी खुशी जब आप पूरे दिल से अपनी जिंदगी को अपनाते हैं।
ये वो एहसास है जब आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं, चलो आज का दिन जीते हैं।
अच्छा, तो पहला है जीवन को पूरे दिल से हाँ कहना। लेकिन सिर्फ हाँ कहना तो काफी नहीं होगा, उसमें पूरी तरह शामिल होना भी तो जरूरी है ना। अगर मैं बस किनारे बैठकर हाँ हाँ करता रहूं तो क्या फायदा?
आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यही दूसरा हिस्सा है, जुड़ाव, यानी एंगेजमेंट।
जुड़ाव
ये जीवन के साथ बहने या फ्लो में होने की भावना है। जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता।
हाँ, होता है ऐसा।
आप ऊर्जा से भरे हुए महसूस करते हैं, आपके अंदर जीवन को लेकर एक दिलचस्पी होती है। ये बोरियत और उदासीनता का ठीक उल्टा है।
समझ गया। जैसे कोई कलाकार जब पेंटिंग कर रहा हो या कोई वैज्ञानिक अपनी रिसर्च में खोया हो, पर इन दोनों के लिए, यानी जीवन को हाँ कहने और उसमें डूब जाने के लिए, एक चीज की बहुत जरूरत है, और वो है मन की शांति। अगर दिमाग में हर वक्त चिंता की घंटी बज रही हो तो ये दोनों ही मुश्किल हैं।
एकदम सही, और यही तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है, सामंजस्य यानी अट्यूनमेंट।
सामंजस्य
इसका मतलब है सुकून, आत्मविश्वास और एक तरह की भीतरी शांति। ये वो अवस्था है जब आप तनाव, चिंता या डिप्रेशन से आजाद महसूस करते हैं। ये आपकी भावनात्मक जमीन है। अगर ये जमीन ही दरारों से भरी है तो उस पर खुशी की इमारत नहीं बन सकती।
वाह, तो असली खुशी इन तीनों का एक मिलाजुला रूप है, अनुमोदन, जुड़ाव और सामंजस्य। ये एक बहुत ही मुकम्मल तस्वीर पेश करता है। ये सिर्फ मुस्कुराने से कहीं ज्यादा गहरी चीज है।
और बात यहीं खत्म नहीं होती। हेब्रोन एक और बहुत जरूरी फर्क बताते हैं।
अच्छा।
सुख यानी हैप्पीनेस और एक अच्छा या सार्थक जीवन यानी वेलबींग, यूडेमोनिया के बीच का फर्क।
एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि कोई इंसान खुश होकर भी एक अच्छा जीवन नहीं जी रहा हो? ये मुमकिन है? ये बात तो हमारी रोजमर्रा की सोच के बिल्कुल खिलाफ जाती है। इसे थोड़ा और समझाइए।
जरूर। कल्पना कीजिए एक खुश मूर्ख की जो अपनी नासमझी में मगन है, या एक खुश जालिम की जिसे दूसरों को तकलीफ देकर मजा आता है।
ओके।
हेब्रोन के पैमाने को लो। हो सकता है कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से खुश हो, उनके अंदर शायद शांति भी हो और अपनी जिंदगी को लेकर हाँ का भाव भी हो, पर क्या हम कहेंगे कि वो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, एक ऐसा जीवन जिसकी हम तारीफ करें?
नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ गया। और इसका उल्टा भी सच हो सकता है। कोई समाज सेवक जो बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा है, वो भूखा प्यासा है, थका हुआ है, यानी उस पल में वो नाखुश है, लेकिन हम सब कहेंगे कि वो एक बहुत ही सार्थक और अच्छा जीवन जी रहा है।
आपने एकदम सही समझा। इसीलिए हेब्रोन कहते हैं कि एक अच्छे और पूरे जीवन के लिए सिर्फ खुशी काफी नहीं है, उसमें नैतिकता, ज्ञान, उपलब्धि और सच्चाई से जुड़ाव जैसे तत्व भी होने चाहिए।
तो खुशी उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है, पर पूरी कहानी नहीं है।
बिल्कुल।
इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात मेरे दिमाग में बैठ गई है, वो ये कि खुशी कोई स्विच नहीं है जिसे हम जब चाहें ऑन या ऑफ कर सकें। ये हमारे होने का एक तरीका है। ये वो बैकग्राउंड म्यूजिक है जो हमारी जिंदगी में लगातार बज रहा है, ना कि कोई गाना जो बस थोड़ी देर के लिए प्ले हुआ।
और दूसरी अहम बात ये कि हम अपनी खुशी के बारे में कितने गलत अंदाजे लगाते हैं। हमें लगता है कि लॉटरी लग जाएगी तो जिंदगी भर के लिए खुश हो जाएंगे, या नौकरी चली गई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
हाँ, ये तो हम सब सोचते हैं,
लेकिन रिसर्च बताती है कि इंसान हर हाल में ढल जाता है। बड़ी से बड़ी खुशी या बड़े से बड़े गम का असर कुछ महीनों में कम हो जाता है। इसे साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं।
हाँ, और पैसे और खुशी का रिश्ता भी ऐसा ही है। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा खुशी, पर किताब बताती है कि बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाने के बाद और ज्यादा पैसा खुशी पर बहुत कम असर डालता है।
ऐसे इसलिए क्योंकि पैसा आपकी चिंता कम कर सकता है, यानी वो आपके सामंजस्य को थोड़ा बढ़ा सकता है,
लेकिन
वो आपको गहरे रिश्ते या किसी काम में जुड़ाव या जिंदगी के लिए अनुमोदन खरीद कर नहीं दे सकता। वो चीजें हमें खुद कमानी पड़ती हैं।
और आखिरी बात जो मुझे बहुत जरूरी लगी वो ये कि खुशी सिर्फ हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे समाज, हमारी सरकार और हमारे आसपास के माहौल पर भी बहुत निर्भर करती है।
बिल्कुल।
अगर कोई एक असुरक्षित समाज में रहता है जहां भरोसा नहीं है, तो भीतरी शांति या सामंजस्य पाना कितना मुश्किल होगा।
सही बात है। इसीलिए भूटान जैसा देश अपनी तरक्की को GDP यानी पैसे से नहीं, बल्कि GNH यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से मापता है। ये इस बात को मानता है कि एक सरकार का काम सिर्फ सड़कें बनाना नहीं, बल्कि नागरिकों के लिए ऐसा माहौल बनाना है जहां वो एक खुशहाल और सार्थक जीवन जी सकें।
इस किताब में कुछ लाइनें ऐसी हैं जो सच में दिमाग में अटक जाती हैं। जैसे एक जगह वो कहते हैं, खुशी आपके जीवन के बारे में आपका कोई फैसला नहीं है, ये उसमें जीने का एक तरीका है, ये आपके जीवन पर आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया है।
ये सोचने और होने के फर्क को बहुत खूबसूरती से बताती है। खुशी कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है जिसे हम भरते हैं, ये वो एहसास है जिसके साथ हम अपनी जिंदगी जीते हैं।
एक और विचार है, हम अक्सर अपनी खुशी के बारे में गलत अंदाजा लगाते हैं। हमारा ध्यान पल पल बदलते मूड पर होता है और हम जीवन की गहरी भावनात्मक धाराओं को पहचानने में चूक जाते हैं।
यह एक तरह की चेतावनी है। इसका मतलब है कि सच्ची खुशी को समझने के लिए थोड़ा रुक कर अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हमें अपने बदलते मूड के शोर से परे जाकर अपनी स्थायी भावनात्मक अवस्था की धुन को सुनने की कोशिश करनी चाहिए।
और अंत में ये विचार जो नैतिकता को सबसे ऊपर रखता है, एक व्यक्ति खुश हो सकता है फिर भी एक अच्छा जीवन नहीं जी रहा हो। एक सार्थक जीवन के लिए सद्गुण, अर्थ और वास्तविकता से जुड़ाव भी आवश्यक है।
ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ अच्छा महसूस करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं हो सकता। एक अच्छा इंसान बनना और सार्थक काम करना, चाहे उसमें मुश्किलें ही क्यों ना आए, एक बेहतर जीवन की निशानी है।
ठीक है, ये सब सुनने में बहुत गहरा और अच्छा है, लेकिन कल सुबह जब कोई अपनी जिंदगी में वापस जाएगा तो इन विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकता है?
इसका सबसे पहला और सीधा असर हमारे लक्ष्य तय करने के तरीके पर पड़ सकता है। अगली बार जब कोई किसी बड़े प्रमोशन या महंगी कार के पीछे भाग रहा हो, तो रुक कर खुद से पूछें, क्या ये रास्ता मुझे ज्यादा शांति और जुड़ाव देगा, या ये सिर्फ मेरा तनाव और मेरी चिंताएं बढ़ाएगा?
हो सकता है जवाब आपको हैरान कर दे।
बिल्कुल,
ये तो बड़े फैसलों में भी मदद कर सकता है। जैसे अगर कोई सोच रहा है कि उसे नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना चाहिए या नहीं, तो सिर्फ सैलरी और फायदों की लिस्ट बनाने के बजाय वो हेब्रॉन के 3 आयामों के बारे में सोच सकता है। कौन सा विकल्प मुझे ज्यादा सुकून, ज्यादा जुड़ाव और जिंदगी के प्रति हाँ वाली भावना देगा?
और सबसे जरूरी है अपनी आत्म जागरूकता बढ़ाना। दिन के आखिर में खुद से ये पूछने के बजाय कि क्या मैं आज खुश था, ये पूछना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में मेरी आम भावनात्मक अवस्था कैसी रही है? क्या मैं ज्यादातर शांत और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा था, या ज्यादातर बेचैन और थका हुआ?
ये हमें अपनी जिंदगी की सच्ची तस्वीर दिखाता है।
सही।
इस पूरी चर्चा के बाद मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि खुशी को ढूंढने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। अगर मंजिल ही गलत तय कर लेंगे तो सही रास्ते पर कैसे चलेंगे? ये किताब हमें कोई बना बनाया नक्शा तो नहीं देती, पर एक बेहतर दिशा सूचक जरूर देती है जिससे हम अपनी दिशा खुद तय कर सकें।
और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए कभी कभी नाखुश होना भी ठीक है, बशर्ते वो किसी बड़े और सार्थक मकसद के लिए हो। ये खुशी को सिर्फ फील गुड फैक्टर होने की स्वार्थी खोज से बचाता है और उसे एक नैतिक गहराई देता है। चलिए आज की चर्चा को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, अगर हमारा समाज अपनी तरक्की को सिर्फ पैसे और जीडीपी से नहीं बल्कि लोगों के सामंजस्य, जुड़ाव और अनुमोदन के स्तर से मापता तो हमारी दुनिया कितनी अलग और शायद कितनी बेहतर होती।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।